कृपलानी फैमिली से बिलोंग करते थे, सिंधियों में जो ब्राह्मण होते हैं उनको कृपलानी बोलते हैं, तो सिंधी ब्राह्मण थे कहिए सिंपल भाषा में। परिवार के इनके फादर स्कूल के मास्टर थे, साधारण परिवार में जन्म हुआ बाबा का। लेकिन बाबा का जन्म बहुत चमत्कारी, पढ़ाई की है, उसके बाद बिजनेस शुरू किया, फिर बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते गए तो हीरे जवाहरात का उन्होंने बिजनेस कलकत्ता में एक पार्टनर के साथ शुरू कर दिया। उसमें भी बहुत बाबा आगे बढ़े। बाबा शुरू से बड़ा हृदय के दयालु थे, कृपालु थे, रहम दिल थे। एक उनके नैनों में एक रूहानियत थी शुरू से, बहुत एक सिंपल व्यक्ति थे लेकिन कर्मठ व्यक्ति थे शुरू से। जब भक्ति मार्ग में जब इनका बिजनेस था, लौकिक में थे, परिवार में रहते थे, इनका मैरिज था, बच्चे थे, 5 बच्चे थे, लेकिन भक्ति में बहुत इनको अटूट विश्वास था। यहां हम सब बैठे हैं तो हम लोगों ने एक गुरु दो गुरु किया होगा, बाबा ने 12 गुरु किया था। 12 गुरु आप कहेंगे क्यों भाई, इसलिए किया था कि उनको परमात्मा की खोज थी, भक्ति करते थे, बिजनेस भी बहुत आगे, बिजनेस में आगे बढ़ गए, मर्चेंट बन गए हीरे जवाहरात के। इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि राजाओं के साथ इनका बिजनेस, नई नई चीजें बनाना, तो जितने भी राजस्थान के राजाएं थे या नेपाल के राजा थे या विदेश में आप जाएंगे, लंदन में विक्टोरिया के वहां म्यूजियम देखने के लिए, तो वहां हीरा का एक ये है, वो बाबा का बनाया हुआ है। क्योंकि बाबा की डॉटर निर्मल शांता जब गई तो वो म्यूजियम, जैसे हम कहीं जाते हैं तो आपके शहर में जाएंगे तो कुछ तो दिखाएंगे कि भाई ये हमारे शहर की विशेषता है, आप चलिए, तो दादी को ले गए तो दादी का नजर पड़ा और दादी ने कहा ये तो हमारा बाबा का बनाया हुआ है। तो सिक्योरिटी वहां सुना, वो महारानी को बोल दिया जाकर के, एक लेडी आई है वो बोलती है कि ये हमारे बाबा का बनाया हुआ है, वो इंडिया से आई है। तो महारानी ने दादी को बुला लिया, बुलाओ उनको, तो परिचय हो गया। दादी बाबा के साथ जाते आते रहते थे तो ये पहचान लिए उन्होंने। तो कहने का भाव है कि विदेशों में भी जो राजाएं थे वहां बाबा का बिजनेस था, लेकिन भक्ति भी बहुत कूट कूट करके भरी थी। उनके गुरु उनके घर आते थे तो आप मानेंगे नहीं, उनका बाथरूम बाबा खुद धुलाई करते थे अपने हाथ से, नहीं गुरु जी आए हैं, इतना भावना था। और गीता पाठी थे, कहीं ट्रेन में भी जाते थे, जब तक गीता नहीं पढ़ते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। 60 वर्ष की आयु, बाबा का धीरे धीरे वैराग्य शुरू हुआ। सीधी परमात्मा उनके तन में नहीं आया, भगवान पतित तन में कैसे आएगा, तो उनको वैराग्य दिलाया, क्योंकि उनके परिवार था, वाइफ थी, बच्चे थे, तो उन्होंने वैराग्य दिलाया, बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ाया, वैराग्य। जब बाबा को ये था तो तीर्थ स्थानों पर, लेकिन बाबा कहां भी जाते थे पूरी फैमिली को लेके जाते थे, अकेले नहीं जाते थे। तीर्थ स्थानों पर बाबा जाते थे तो वहां दान पुण्य करते थे, पूजा करते थे, तो दान करते थे जबकि शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई है। अज्ञान काल की बात सुना रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जैसे आप लोग अपने परिवार में नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं उन दिनों की बात सुना रहा हूं। तो बाबा दान पुण्य करते थे, परिवार साथ में होता था, तो उन दिनों में सारे विश्व के लिए दान करते थे कि विश्व का भला हो, विश्व का कल्याण हो। तो बच्चे साथ में होते थे, आजू बाजू खड़े हो तो पूछते थे, बाबा या डैडी कहते थे, डैडी आप मेरे नाम से क्यों नहीं दान पुण्य कर रहे हो, सारे विश्व के नाम से दान पुण्य कर रहे हो। तो बाबा देख करके उनको मुस्कुराते थे और कहते थे, बेटा तुम कहां खड़े हो, विश्व में खड़े हो ना, तो विश्व के लिए दान दिया तो तुम्हारे को भी मिलेगा, सारे विश्व को मिलेगा, तो तुम विश्व में खड़े हो तो तुम्हारे को भी मिलेगा। मतलब मेरा पर्सनल अपनापन बाबा के जीवन में नहीं था। बाबा कलकत्ता से आते थे, हैदराबाद सिंध में जाते थे, घर तो जाते ही थे, लोग बिजनेस करते हैं तो घर तो जाते हैं, तो बहुत सारी मिठाइयां, क्योंकि कलकत्ता की मिठाई मशहूर होती थी, आज भी मशहूर है, तो वो वहां से मिठाइयां ले जाते थे, खिलौने ले जाते थे और बच्चों को बांटते थे, अड़ोस पड़ोस वालों को मिठाइयां बांटते थे। लौकिक जीवन उनका ये था। जब बाबा को वैराग्य हुआ, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो उनको साक्षात्कार हुआ। गुरुजी कथा सुना रहे थे, सत्संग में बैठे थे, सत्संग में बाबा बैठे बैठे गुम हो गए। गुरुजी देख रहे हैं कि बाबा को कुछ हो रहा है और बाबा वहां से उठ करके बॉम्बे में उनके दोस्त थे, उनके अपने रूम में चले गए। तो उनकी पुत्र बधु ब्रिजेंद्रा दादी, उन्होंने सोचा कि बाबा कभी भी जिंदगी में कोई सत्संग में गुरु कथा सुना रहा है और बाबा बीच से उठ करके आए, ऐसा नहीं होता है। आज बाबा उठ रहे हैं, इसका मतलब बाबा की तबीयत कुछ खराब है। पीछे पीछे दादी गई तो बाबा बैठे हैं और सारा रूम लाल लाल हो गया है। लाल लाइट जलाया नहीं जाता, जैसे अभी हम योग करते हैं तो लाल लाइट जलाया जाता है, तो लाल लाइट बाबा के कमरे में जलाया नहीं गया था, साक्षात्कार बाबा को हो रहा था। और फिर वहां से शुरुआत हुआ, पहला लेडीज है भगवान को रिसीव करने वाली हमारी ब्रिजेंद्रा दादी, फर्स्ट दादी ने देखा। फिर बाबा तो उसी नशे में, अब बाबा किसी को दृष्टि दे तो उसको साक्षात्कार होने लगे, किसी का कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को नारायण का साक्षात्कार, किसी को फरिश्ते का साक्षात्कार, ये हो गया लोगों को, बाबा क्या हो गया, आज इनके नजर में नजर मिलाते हैं तो हम वतन में चले जाते हैं, शरीर के भान भूल जाते हैं। तो इस तरह से शुरू हुआ। फिर लोगों ने पूछा, बाबा अनुभव सुनाओ, क्या हुआ आपको, कथा सुन रहे थे, सत्संग में बैठे थे। बाबा ने कहा कि अभी मेरे को आवाज में नहीं आने दो, अत नहीं आपको सुनाना पड़ेगा, दो लाइन में सुनाओ, लेकिन सुनाओ। तो बाबा ने सुनाया कि मैं सत्संग में बैठा था लेकिन गुम हो गया, वहां से उठ के अपने रूम में आया तो आवाज आई, आपको ऐसा दुनिया बनाना है, और बाबा को धुन सवार हो गया। फिर वो बनारस में अपने उनके फ्रेंड रहते थे तो बनारस में चले गए उनके पास, कोठी था उन फ्रेंड की, साथ में बगीचा था। तो रात के टाइम में आवाज हुई, आप उठो, विश्व का निर्माण करना है, उठो, विश्व का निर्माण करना है। बाबा देखा कि कोई दरवाजा मेरा खुला नहीं है, कोई आया नहीं, कौन जगा रहा है। फिर उठ करके बगीचे में बैठ गए, थल्ला बना हुआ था, वहां उनको साक्षात्कार हुआ। ऊपर से तारे आ रहे हैं, नीचे फरिश्ते बन रहे हैं, कोई नारायण बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई देवता बन रहा है। बाबा आंखों से देखा, फिर थोड़े देर में देखा कि विनाश हो रहा है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, कहां बहुत बाढ़ आ रही है, कहां अकाल से लोग भूखे मर रहे हैं। बाबा को देखा नहीं गया तो बहुत आंसू आया, बाबा घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। फिर आवाज हुई कि तुमको ऐसा देवता बनना है और दैवी दुनिया का स्थापन करनी है। बाबा सभी गुरुओं के पास गए कि ये आपने साक्षात्कार कराया है, तो उन दिनों के गुरु सब ऑनेस्ट थे, सबने कहा कि नहीं लक्ष्मी बाबू आपकी तपस्या है, आपकी तपस्या के कारण परमात्मा ने आपको साक्षात्कार कराया है, मैंने नहीं कराया। फिर वहां से बाबा को बैराग शुरू हुआ। फिर बाबा को बिजनेसमैन था तो ये आदेश हुआ कि नहीं अब आप अपने बिजनेस को बाइंड अप कर दो, समाप्त करो, तुमको ये बिजनेस करना है, आध्यात्मिक बिजनेस करना है, ये धंधा करना है, लोगों को पावन बनाने की धंधा करना है, लोगों को देवता बनाने की धंधा करना है। बाबा हैरान, भाई हम साधारण, हम कोई इंजीनियर नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम नई दुनिया कैसे बनाएंगे? नई दुनिया बनाने के लिए तो बड़े बड़े इंजीनियर चाहिए, टाउन प्लानर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बाबा को तो कुछ नॉलेज नहीं था, वो तो व्यापारी थे। बाबा को आदेश होते गया तो बाबा को आदेश, पहला आदेश हुआ कि अपना बिजनेस माइंड अप करो। वो कलकत्ता में जाकर के पार्टनर को उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये बिजनेस अब नहीं करना है, मेरा जो हिस्सा होता है मुझे दे दो। पार्टनर ने बहुत समझाया, भाई आपके कारण तो हमारा दुकान चलता है, आप तो हीरे की परख आपको ये है, हमको तो परख नहीं है, तो आप ऐसे क्यों करते हैं? बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे परमात्मा की आदेश है, मुझे बिजनेस नहीं करना है। देखिए बिजनेस बाइंड अप कर रहे हैं लाखों की, 1936 की बात कर रहा हूं, बच्चों से राय नहीं लिया, स्त्री से राय नहीं लिया, संबंधियों से राय नहीं लिया। नहीं तो हम कुछ बाइंड अप करते हैं तो घर में राय तो लेते हैं ना, भाई ये करने जा रहे हैं, बाबा ने किसी से राय नहीं लिया। लेकिन बाबा की वैराग, बाबा की त्याग, बाबा की जीवन वो देख करके बच्चे सब लोग कि बाबा को कुछ हो रहा है। बाबा बाबा नहीं दिखाई देता था, बाबा को शिव बाबा ने कहा कि आप आत्मा हो, तो बाबा को धुन सवार हो गई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। बच्चे का नाम नारायण था, वाइफ का नाम जसोदा था, तो जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। इतना आत्मा का धुन लगा दिया बाबा ने कि शरीर का भान भूल गया। जैसे आप लोगों को भी आत्मा का लेसन तो दिया गया ना, ये ज्ञान हो गया ना कि हम आत्मा है, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। लेकिन हम लोगों को नॉलेज हुई, धुन नहीं हुआ, हम स्वरूप नहीं बने, राइट? बाबा स्वरूप बन गए। अब बाबा को कोई भी देखे तो नारायण के रूप में देखे, फरिश्ता के रूप में देखे, कृष्ण के रूप में देखे। एक बार की बात है, बाबा के युगल हम कहते हैं, उनकी स्त्री उनको नाश्ता बना करके लाई, और बच्चियां उनकी डॉटर निर्मल शांता, पुत्र वधु ब्रजेंद्रा दादी, उनको कही कि बच्चियां आप लोग जाकर के बाबा को नाश्ता करा दो। तो दोनों बच्चियां ने कहा कि मम्मी आप इतना प्यार से नाश्ता बनाई हो, आप क्यों नहीं जाती, आप ही कराओ। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब भी हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा बाबा नहीं दिखाई देता है, वो तो नारायण बैठा है, फरिश्ता बैठा है, कृष्ण बैठा है, मैं नाश्ता किसको कराऊं। बच्चियों ने भी जवाब दिया, मम्मी हम भी किसी कारण से बाबा के पास जाते हैं तो बाबा बाबा नहीं दिखाई देता है, नारायण दिखाई देता है, फरिश्ता दिखाई देता है। कहने का भाव ये है कि बाबा अपने आप को टोटल ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर इतना हो गया कि बाबा को कोई ऑपोजिशन नहीं किया, नहीं तो वाइफ कर सकती है कि भाई पांच बच्चे हैं, तीन की शादी हुई है, दो की शादी नहीं हुई है, इनकी शादी में लाखों खर्चा होता है, कहां से खर्चा आएगा, बिजनेस आप बंद करोगे तो। लेकिन किसी ने बोला तक नहीं, जो बाबा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सबने सहयोग दिया। और फिर बाबा को ये हो गया, अब बाबा सत्संग कराने लगे, सिंध में हैदराबाद की बात कर रहा हूं, तो लोग आने लगे और साक्षात्कार हो जाए, जो सत्संग में बैठे वो ट्रांस में चला जाए, वो श्री कृष्ण के साथ झूले में झूले, वो वहां ट्रांस में वो ये स्वर्ग देख रहे हैं, चाहे वो छोटी छोटी कन्याएं हैं, बड़े हैं, सब पूरे सिंध में आवाज फैल गया कि दादा सत्संग कराता है, वो सब ट्रांस में चले जाते हैं, ट्रांस का स्वर्ग का साक्षात्कार करते हैं। फिर अब जो सिंध में और भी साधु संत ये वो लोग थे जो सत्संग कराते थे, जो माताएं उनके परमानेंट सत्संग में जाती थी, वो लोग भी देखने के लिए आ गई कि बाबा कौन सा सत्संग करा रहे हैं, हम तो गुरु के पास वर्षों से जा रहे हैं, कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा के पास जाने से साक्षात्कार हो जाता है। तो सारे संतों क्या सारे शिष्य बाबा के पास आ गए, साक्षात्कार हुआ, वो अपने गुरु के पास जाए नहीं, गुरुओं को ईर्ष्या हुई कि कौन सा ये धंधा अपनाया कि हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारा धंधा बंद हो गया, हमारी कथा में कोई आ नहीं रहा है, तो ईर्ष्या हुई, ऑपोजिशन उन्होंने किया। तो बाबा का सबसे बड़ा प्योरिटी, जब तक हमारे जीवन में प्योरिटी नहीं आएगी तब तक हमारा योग नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा से योग करना है ना। जब तक हमारा भोजन सात्विक नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या बनना है, देवता बनना है ना, श्री नारायण बनना है ना, श्री फरिश्ता बनना है ना, श्री कृष्ण बनना है ना, तो कृष्ण बनना है, नारायण बनना है, देवता बनना है, तो हमारा खान पान शुद्ध होगा, आहार विहार शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, तो ही देवता बनेंगे ना। तो लोगों में परिवर्तन आने लगा, फिर ये माताएं कन्याएं बाबा का सत्संग बढ़ता गया, बाबा का सत्संग बढ़ा तो बाबा को वैराग तो था ही था। बाबा श्रीनगर चले गए परिवार को लेकर के, वहां से लेटर भेजते थे रोज, जिसको मुरली कहते हैं, आज भी मुरली हमारे यहाँ सुनाई जाती है, वो रोज लेटर भेजते थे और मम्मा उस लेटर को पढ़ करके रोज सुनाती थी। सत्संग बढ़ता गया, बाबा श्रीनगर में है और वो लेटर सुन करके लोगों को साक्षात्कार हो रहा है, लोग बढ़ते गए, छोटा सा सत्संग था बड़ा हो गया, एक हॉल छोटा पड़ा बड़ा बनाया गया, वो छोटा हुआ उसे भी बड़ा बनाया गया, वो शुरू का ही ये बाबा की ब्लेसिंग है। पांडवन में जाएंगे, हिस्ट्री हॉल छोटा सा बाबा ने बनाया, वो छोटा पड़ गया, मेडिटेशन हॉल बनाया 500-700 का, वो भी छोटा पड़ गया, ओम शांति भवन बनाया वो भी छोटा पड़ गया, यहाँ 20,000 का डायमंड हॉल है ये भी छोटा पड़ गया, बाबा अब एक बाबा दादा आते हैं तो 25,000 की सभा हो जाती है। तो मतलब कि ये सब छोटा पड़ने लगा, अब बाबा है वहां, यहां सिंध में ये फैल गया। फिर बाबा आए तो उन लोगों ने बहुत ऑपोजिशन किया कि बाबा इसको बंद कर दो, बोला कि हम कैसे बंद करेंगे, मेरा थोड़ी है, मैं भी तो आपके ही साथ रहता था, ये परमात्मा ने किया है, उनका ये है, तो मैं कैसे बंद कर सकता हूं। अच्छा बंद नहीं करो तो चलो पवित्रता निकाल दो, खान पान के जो आप परहेज बताते हैं वो निकाल दो। बाबा ने कहा कि हमने किसी को मना नहीं किया कि आप तो नॉनवेज नहीं खाओ, इनका दिल है कि हमको कृष्ण बनना है, हमको देवता बनना है, तो देवताओं को आप अपने मंदिर में ले जाते हो, भोग लगाते हो नॉनवेज का, अच्छा नहीं तो फिर ये बच्चियां नहीं खाती है, इनको देवता बनना है तो जबरदस्ती इनको क्यों खिलाते हो। तो बहुत मतलब ऑपोजिशन हुआ, लेकिन बाबा अपने नियम पर डटे रहे, कोर्ट केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बाबा झुके नहीं। कोर्ट में एक बार जज ने फैसला किया कि जो 18 वर्ष के नीचे हैं वो उनको घर जाने की आदेश है क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, तो उन सब बच्चों को कोर्ट के आदेश पर घर, बाबा ने कहा कि ठीक है कोर्ट का आदेश है सब बच्चे आप लोग जाओ। लेकिन बच्चे इतने पक्के थे कि घर में जाकर के घर वालों के हाथ का भोजन नहीं करते थे, मम्मी के हाथ का भोजन नहीं करते थे क्योंकि मम्मी प्याज खाती थी। दो दिन हो गया, तीन दिन हुआ, वो भोजन नहीं करते थे। अभी तीन दिन बच्चा घर में भूखा रहे और माँ बाप खाना खाए, उनको ये नहीं होगा। तो उन्होंने कितना प्रलोभन दिया, तुम ये जेवर ले लो, ये धन ले लो, ये सब कुछ ले लो, उनको कोई आसक्ति नहीं हुई। नहीं, मुझे तो देवता बनना है। तो उन्होंने फिर बच्चों को, 8 दिन हो गया खाना नहीं खा रहे हैं, दुबले पतले हो गए, तरस आ गया, बच्चा तो उन्हीं के हैं। बोले कि अच्छा जाओ, तुम कम से कम जिंदा वहां रहोगे तो हम तो तुम्हारी मुंह तो देखेंगे, यहां शरीर छोड़ दो मर जाओगे तो हम किसको देखेंगे। फिर बच्चों को वहां भेज दिए। फिर कोर्ट में इन्होंने दोबारा ये किया, कोर्ट ने कहा कि भाई एक बार हमने भेज दिया तुम्हारे घर में, तुम उनको संभाला नहीं और फिर से वो यज्ञ में चले गए, तो इसमें बाबा का दोष क्या है? बाबा ने थोड़ी बुलाया, अब तुम अपने बच्चों को नहीं संभाला तो बाबा संभाल रहा है, अब तुम क्यों घड़ी घड़ी कोर्ट में केस करते रहते हो। जज ने कोर्ट सारा केस खारिज कर दिया। तो बाबा को इतनी वृत्ति चेंज हो गई कि ये मेरा बच्चा है ये दूसरे का बच्चा है, वो वृत्ति चेंज हो गई, सबको एक दृष्टि से देखने लगा। और जब वो भाई बहने आए, वो माताएं आई, तो उनके बच्चे थे, किसी को एक थे, किसी को दो थे, किसी के तीन थे, वो बच्चे मम्मी के साथ आ गए। अब उन बच्चों को बाबा ने हॉस्टल खोल दिया, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया कि बच्चों को तो बिजी करना है, उनको कुछ करना है। लेकिन उन बच्चों को बाबा ने क्या कहा, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, भगवान के नजर से उन्होंने देखा। और मार्केट में अगर नया फल आए तो हम लोग क्या करते हैं, नया फल आता है तो ला करके पूजा में रखते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, नया फल है पहले भगवान को पूजा करेंगे। बाबा नया फल आता था मार्केट से मंगा करके, चाहे कितना भी मांगा हो, और अपने हाथ से काट करके बच्चों को खिलाते थे। मेरे पहले ठाकुर का भोग लगेगा, ये मेरे चैतन्य ठाकुर हैं। बाबा ने उनको इतनी पालना की है, वो बड़े हो गए, 14 साल तक तपस्या कराया, बाहर नहीं गए। अगर बाहर जाते थे तो कहां जाते थे, समुद्र के किनारे पर बाबा का भवन था, तो बाबा शाम को समुद्र के किनारे बच्चों को ले जाते थे। 14 साल तपस्या बाबा ने कराया, किसी को कुछ बाहर से नहीं। हमारे 2-4 भाई थे जो सब्जी लाना है, अनाज लाना है, खाना तो सबको खाना है, तो वो लोग मार्केट से जाकर के लाते थे, ये करते थे। जब 47 में बंटवारा हुआ, बहुत कुछ हंगामा हुआ, बाबा ने पहले ही कह दिया कि भाई खून की रक्त की नदियां बहेगी, ऐसे होगा ऐसे होगा, सारे सिंधी लोग सारे हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर के इंडिया में आए, एक चीज लेकर के नहीं आया क्योंकि मुसलमानों ने आने नहीं दिया। फिर लेकिन संस्था में जब भी कुछ होता था, सरकार को तो पता होता था, सरकार सिक्योरिटी भेज देती थी, संस्था में पुलिस आ जाते थे ताकि कोई मुस्लिम कोई भी व्यक्ति यहां संस्था में कुछ नहीं करे। इस तरह से 14 साल इतनी तपस्या बाबा ने कराया। फिर 47 में बंटवारा हुआ और सब लोग इधर इंडिया में आ गए, तो अब बाबा को रिक्वेस्ट करने लगे कि बाबा आप भी इंडिया में आ जाएं तो हम आपसे भी मिलेंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, और हम आपको संस्था के लिए कुछ दान पुण्य भी करेंगे। सीक्रेट आपको सुना देते हैं, दान पुण्य की बात आई संस्था में। आज हम दान पुण्य बहुत वर्षों से कर रहे हैं, दान पुण्य की हमारे भारत में रिवाज है, गरीबों की मदद करने की, साधु संतों को देने की, पूजा करने की रिवाज है, हमारे रग में है, लेकिन हम एक का एक ही मिलता है। आप दस किए, किसी गुरु पे दस दिए तो दस का ही आपको हिसाब मिलेगा। यहां भगवान के घर में सीधे डायरेक्ट शिव बाबा को करते हैं तो एक का पदम गुणा मिलता है। भगवान को दे रहे ना, कोई मनुष्य को नहीं दे रहे ना, दादी जी को नहीं दे रहे ना, मेरे को नहीं दे रहे ना, भगवान को दे रहे हैं। आप कहेंगे कैसे भाई, क्या प्रूफ है, प्रूफ बताइए। आजकल तो हर चीज को प्रूफ मांगते हैं लोग। ये देखा साकार बाबा के टाइम में, कोई गरीब माता गांव से आ रही होगी, गरीब माता क्या ले आएगी, बच्चों को पालने के लिए, खिलाने के लिए, खुद कहीं नहीं है, लेकिन यज्ञ में क्या देगी। वो इतना चावल लाती थी, इतना चीनी लाती थी और बाबा को देती थी। भगवान जिसको हीरे जवाहरात का मर्चेंट किया है, वो व्यक्ति अगर साधारण भी देखो तो इतना चीनी, बताइए आज आपके शहर में कोई करोड़पति है, उसको 10 रुपया दीजिए तो वो अपना इंसल्ट समझेगा और आपको डांटेगा, बोलेगा क्या समझा, हम बेगर हैं कि तुम्हारा 10 रुपया हम लेंगे। बाबा का लोग 4 आना पैसा भेजते थे, बाबा इतना खुश होता था, बच्चे ये 4 आना पैसा तुमको महल मिलेगा। हम देवता बन रहे हैं ना, तो देवता कहां होंगे, स्वर्ग में होंगे ना, तो एक एक का महल जो होगा, फ्लैट सिस्टम नहीं होगा, इतना सब कुछ होगा, धन्य धान्य संपन्न। ये भारत सोने का चिड़िया गायन है ना, कब, जब हम देवता थे तब का गायन है। वैसा सोने का चिड़िया हमारा बाबा बना रहा है, जिस चिड़िया में जाने के लिए हम आपको बुलाए हैं, कि आप अपने परिवार से हट करके आपने डॉक्टरी किया, आपके 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सबने तो डॉक्टर नहीं बना ना, उस परिवार में से आप एक डॉक्टरी विद्या पढ़े तो डॉक्टर बने। अब दैवी विद्या पढ़नी है तो उस परिवार में रहते आपको देवता बाबा बनाएगा, श्री लक्ष्मी बनाएगा, श्री नारायण बनाएगा। ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने की एक कॉलेज है, विद्यालय है, ये गीता पाठशाला है। सुबह उठ करके क्यों मेडिटेशन कराते हैं, क्यों सात्विक अन्न देते हैं। आज देखिए कि इस हमारे भंडारे में, हमारे कैंपस में लहसुन प्याज कुछ नहीं को आता है। भोजन इतना स्वादिष्ट होता है, आप लोग हर व्यक्ति आकर कहता है भोजन बहुत अच्छा मिला। सच पूछिए, मेरे को बड़ा शर्म आता है, आप इतने बड़े लाइन में खड़े होते हैं रोड पर, मेरे को देखा नहीं जाता है, मैं ऐसे मुंह करके चला जाता हूं, करें क्या, इतने लोग आते हैं व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो कहने का भाव कि इतना, क्योंकि जो भोजन बनता है भगवान को भोग लगता है और भोग लगा करके फिर वो प्रसाद आपको मिलता है, ब्रह्मा भोजन मिलता है। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए शास्त्रों में गायन है, देवताएं तरसते थे, वो ब्रह्मा भोजन आपको 3 टाइम मिलता है। किसी जन्म में आपने भगवान को कुछ किया है जो भगवान ने बुला करके वो उजूरा रिटर्न कर रहा है, समझ रहे ना। साधारण भोजन नहीं है, साधारण स्थान पर नहीं आए हो, थोड़ा सा ये होने दीजिए, प्रत्यक्षता होगी। कहेंगे क्या भी, मैं भी तो गई थी, मैं भी 3 दिन रहे, तो इस साधारण स्थान नहीं है, अभ्यास करके देखिए। कल हमारा डॉक्टर गुप्ता क्या बताया, अच्छा वो कुछ भी बताए, उनके पेशेंट को तो ये नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन है ना, तो ये प्रैक्टिकल जीवन है। आप अभ्यास कीजिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, दूसरों को भी आत्मा देखिए, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। आप मेडिटेशन कीजिए, डायरेक्ट परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़िए, आप अपने घर में 10 बार भगवान को बुलाइए, बाबा मैं फ्री हूं आप आ जाओ, आप जरूर ध्यान करेंगे, आपके घर में 10 बार भगवान आएगा, आपके क्लिनिक में 10 बार भगवान आएगा, क्लिनिक का वातावरण कैसे हो जाएगा? आश्रम होगा या नहीं होगा? मंदिर होगा या नहीं होगा? मंदिर घर को मंदिर बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए यहां बुलाया गया है माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में। आपका घर मंदिर हो, क्यों? क्योंकि दुखों का भरमार और आने वाला है, दुखों का पहाड़ गिरने वाला है, वो दवाइयों से मिटेगा नहीं, वो तपस्या हमारे योग बल से मिटेगा, समझे ना? तो वो योग बल आपको डबल डॉक्टर बनाने के लिए बाबा ने बुलाया है कि शरीर का डॉक्टर हो लेकिन अब आत्मा का भी डॉक्टर बन करके जाओ। तो क्लिनिक में, घर पर, कहां भी बैठ करके संकल्प करो, संकल्प से लोगों को बीमारी खत्म हो जाएगी। लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब आपके नजदीक आते हैं, आपके पास आते हैं, आधा बीमारी तो मेरा दूर हो गया। कैसे? और भगवान को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो आपके नजदीक आने से वो बीमारी उनके दूर हो जाएगा। लेकिन आप डरेंगे नहीं, मेरा बिजनेस का क्या होगा, सब अगर मेरे दृष्टि से ही ठीक हो जाएंगे तो मेरे को पैसा कौन देगा, फी कौन देगा? वो दुआएं इतने देंगे, वो दुआएं पैसे से भी ज्यादा काम करेगा। वक्त पर पैसा काम नहीं करता है, वक्त पर पैसा काम नहीं करता है, दुआएं काम करती है। करोड़पति है, बीमार है, आईसीयू में है, डॉक्टर आकर के देखता है, दवाई लेके चला जाता है। हमारी सिस्टर रहती है 24 घंटा, उसको दवाई पानी, ये उसको एक चम्मच पानी चाहिए, 4 फैक्ट्री है, 10 फैक्ट्री है, हजारों नौकर चाकर हैं, परिवार है, लेकिन एक चम्मच पानी कौन दे रहा है? हमारी सिस्टर दे रही है, हमारे डॉक्टर दे रहे हैं, ये कौन कर रहा है, सोचो। तो परमात्मा हम बच्चों को ऐसा योग्य बना रहा है। महाभारत की एक बात सुना दें बीच में, युधिष्ठिर ने एक शब्द झूठ बोला था, उसको सजा हुई कि तुमने झूठ बोला है, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बोला कि ठीक है, मैंने गलती किया है, मैं नरक में जाऊंगा। तो धर्मराज के दूत आए और उनको ले गए कि चलिए साहब आपको नरक में चलना है। बोला कि चलिए। नरक में जाकर के खड़ा कर दिया, 5 मिनट हुआ वो निकलने लगे, तो नरक निवासियों की आवाज हुई, साहब आप छोड़ करके नहीं जाइए। क्यों भाई? मेरे को तो 5 मिनट की ही सजा मिली है, 5 मिनट मेरा पूरा हो गया। अतः नहीं, आपके खड़ा होने से हम नरक निवासियों का दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो गया। अब एक महात्मा के, एक पुण्यात्मा के खड़ा होने से नरक निवासियों का दुख दर्द मिट जाता है, तो आप सेकेंड गॉड, डबल डॉक्टर, परमात्मा को याद करेंगे तो दुनिया के दुख दर्द मिटाएंगे या नहीं मिटाएंगे? महाभारत हमने नहीं लिखा है ना, हमने बनाया नहीं है ना, एक शास्त्रों में है ना, हम कहानी तो हम नहीं बनाया है ना, प्रैक्टिकल है ना। तो बाबा हम लोगों को ऐसा योग्य बना रहा है ताकि आने वाले भविष्य में, अभी अब प्रैक्टिकल जरा सोचिए, अर्थ कोई खो जाए पूरे भारत में, सारे रोड टूट जाए, फैक्ट्री अर्थ क्विक में नष्ट हो जाए, कहां दवाई बनेगी, कहां दवाई आएगा? अगर दवाई स्टोर में पड़ा होगा तो उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, रोड तो टूटा हुआ है, कहां से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट से करेंगे? होगा? नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा समय आ रहा है। इसलिए बाबा आप लोगों को बुलाया है कि आप पहले से तैयार हो जाओ, इतना तैयार हो जाओ, संकल्प करो। बाबा ने 14 साल जो बच्चों को तपस्या कराया और 51 में इंडिया आए, वहां के सरकार एक आलपिन तक नहीं रखा। नहीं बाबा, पहले तो आने नहीं दे रहे थे, नहीं आपके रहने से हमारा पाकिस्तान पाक साफ है, हमारे पाकिस्तान में ये है सुकून है, आप नहीं जाइए। बाबा ने कहा कि इनके परिवार सब बुला रहे हैं। बोला कि अच्छा ठीक है जाइए। एक चीज नहीं उन लोगों ने रखा। बोला कि बाबा आपका सब चीज ले जाइए, बल्कि सरकार के अधिकारी लोग पैकिंग करके और स्टीमर में रखा, एक चीज भी नहीं उन्होंने रखा। नहीं, इतना बाबा के प्रति पाकिस्तान के सरकार को रिगार्ड था। 51 में आए और यहां पहले, अब कैसे उनको बाबा को कैसे ये हो कि माउंट आबू ही आपको आना है। पांच भाई बहनों को बाबा ने इंडिया में भेजा कि देखो कहां जगह है, लेकिन बाबा ने कह दिया था कहीं आपको पहाड़ी पर जाना है, लेकिन बाबा स्थान नहीं बताएगा। माउंट के पहाड़ी पर ही जाना है, कई पहाड़ियों पर वो लोग घूम कर आए। एक संत थे जो सिंधियों के गुरु थे, हमारे दीदी दादियों के गुरु थे, तो उनके उनको पता लगा तो उन्होंने बुलाया और कहा कि आप माउंट आबू पर जाओ। माउंट आबू का पहाड़ सात्विक पहाड़ है, तो वहां तपस्या के लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है। माउंट आबू आकर के हमारे दीदी और कुछ डेलीगेट्स आए, उन्होंने देखा बड़े बड़े सब जगह, उन्होंने देखा राजाओं के भवन थे, सब राजाओं के, राजस्थान के राजाओं के भवन है वहां, पोकरान हाउस है, लिंडी हाउस है, बीकानेर पैलेस है, फलाना पैलेस है, फलाना पैलेस है, सब राजाओं का वहां किला है, जयपुर कोठी है, तो वहां भरतपुर कोठी को उन्होंने देखा। राजा और राजाएं तो अपने यहां रहते थे, राजस्थान में रहते थे, वो तो गर्मियों में आते थे, बड़े बड़े ये बना करके यहां माउंट में रखते थे। तो भरतपुर कोठी में पहले, जिसको ब्रिज कोठी पहले बोलते थे, फिर भरतपुर कोठी उसको बोला गया। अब सिंध हैदराबाद में आप जानते हैं कि वो समुद्र के किनारे था, अब वहां लोग रहते थे तो गर्मी था, कभी सर्दी उन्होंने देखा नहीं है। जैसे बॉम्बे से आप लोग कोई भाई बहने आए होंगे तो उनको पता है बॉम्बे में हमेशा ही नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, गर्मी रहती है, सर्दियों में भी स्वेटर बॉम्बे में पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां सर्दियों में तो पूरा कोट ये वो सब कुछ पहनना पड़ता है। अब यहां बेगरी पार्ट हो गया सब, यहां सर्दी शुरू हो गई, बारिश बहुत, अब बारिश हो गई तो सर्दी होगी, अब कपड़े नहीं थे। बेगरी पार्ट बाबा ने कराया, जो कच्चे थे वो बाबा के पास आकर के बोले बाबा हम जाएं घर और घर में घर वालों को ये करके हम यज्ञ में मदद करें। हां बच्चे जाओ, बाबा छुट्टी दिया, वो घर गए, घर में ही अभी तक हैं कि भाई अभी तो यहां तो ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ओढ़ने के लिए बिस्तर और गर्म कपड़े रजाई कंबल नहीं है, क्या होगा, चले गए। कुछ बच्चे ऐसे बाबा के साथ रहे, वो कुछ भी हुआ वो हिले नहीं और बाबा ने उनको सेवा पर भेजा। इतने वो रईस, 1936 में उनका जापान सिंगापुर और अमेरिका में बिजनेस था, उस परिवार के हमारी दादियां, और जब सेवा पर निकली दिल्ली गई तो दिल्ली में तो अपना आश्रम नहीं है, आज हम कहीं भी जाएं तो मेरे को लेने के लिए गाड़ी आता है, लोग रिसीव करने के लिए आते हैं। अब दादियां 51 में गई तो कोई अपना नहीं, बड़ा मुश्किल से वो बाहर निकले तो बाहर में लोग देख रहे हैं बीड़ी पी रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, देख करके हैरान है, ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि 14 साल तो ऐसे लोगों को उन्होंने देखा नहीं। फिर भी बाबा साथ है, धर्मशाला में जाकर के धर्मशाला वाला बोलता है कि नहीं हम दो दिन से ज्यादा आपको रहने नहीं देंगे, हमारा नियम है। अच्छा भाई दो दिन तो रखो। तैयार होकर के जमुना के कंठे पर बोरी, उनके सीढ़ियों पर गलीचे हैं, नौकर चाकर गलीचे पर घूमते हैं, वो हमारी दादियां बोरी, क्योंकि बैठने के लिए आसन तो चाहिए, बोरी पर जमुना के कंठे पर बैठ करके तपस्या कर रहे सुबह। माताएं बहने लोग जमुना जी से स्नान करके पूजा करके निकले थे, कौन बैठे हैं इनके, इतने लाइट है, माइट है, तेज है। डरते डरते उनके पास चले गए, भाई आप कौन हो? अरे तो माउंट आबू से आए हैं, हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, आपको सत्संग करेंगे। तो अब सत्संग सुनाएंगे? हाँ बैठो। सत्संग शुरू हुआ, माता एक बोली, यहां बैठे हो बोरी पर नहीं, आप कहाँ ठहरे हो? आ तो पलाने इसमें धर्मशाला में। बोली कि नहीं, धर्मशाला में नहीं रहिए, हमारा बंगला खाली है, उसमें बैठिए, आइए, रहिए। शुरू हो गया। और वो दिन, आज दिन 140 कंट्री में बाबा का सेवा है। तो ये मनुष्य क्या सेवा नहीं है, ये परमात्मा की सेवा है, परमात्मा करा रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह, क्योंकि हम 72 से हैं, 73 से जीवन समर्पित कर दिया, तब से यज्ञ को देखता हूं। इतना छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था, बेगरी पार्ट था, ये ऐसे टिपोई नहीं था, ये नहीं था, ऐसा कुर्सी नहीं था। एक दादा हमारा अपने रूम से स्टूल ला करके दिया, बिहारी बाबू तुम खाली खाना खाता है और ये करता है, तुम पढ़ाई किया है तो उसको यूज करो। हम बोला कि दादा कहाँ बैठेंगे, अपने रूम से निकाल करके स्टूल दिया, स्टूल पर बैठ करके और ये पांव पर फर्स्ट एड बॉक्स रख करके दवाई देना शुरू किया। और आज इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर। उन दिनों में हम मीटिंग किया, 84 की बात कर रहा हूं, 8 डॉक्टर पूरे इंडिया से आए थे, 8 डॉक्टर। आज 4,500 बाबा के बच्चे डॉक्टर हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, हर प्रकार के डॉक्टर हैं। तो ये किसका काम है? परमात्मा का काम है। परमात्मा आया है, अब वो जाने की तैयारी में है, क्योंकि साकार बाबा अव्यक्त हो गए। अव्यक्त हो गए तो देखिए, बाबा अंत तक 93 इयर्स के एज में बाबा ने कभी लकड़ी नहीं लिया, कभी चश्मा नहीं पहना, इतना स्ट्रांग। और लास्ट के दिन बाबा रोज बच्चों को मुरली चलाते थे, जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग कराया। 18 जनवरी को भी सुबह बाबा मुरली नहीं चलाए, चूंकि तबीयत थोड़ी सी नरम थी, तो शाम को दादी को बोला कि शाम को बाबा आज सुबह नहीं क्लास कराया है, शाम को क्लास कराएगा। शाम को सभी बच्चों को जल्दी भोजन करा करके दादी ने हॉल में, हिस्ट्री हॉल में बैठा दिया। बाबा आए, सबको मुरली चलाया, आधा घंटा तक क्लास कराया होगा। क्लास करा करके कहा, बाबा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बच्चे बनना है। और बाबा विदाई लेता है। अभी बच्चों ने सोचा कि भाई यहाँ हॉल से विदाई लेकर रूम में जाता है, ये थोड़ी सोचा कि बाबा हमेशा के लिए विदाई अब हमसे ले रहा है। और रूम में जा करके बाबा चारपाई पर ऐसे बैठा है, दादियां उनको छोड़ने आई है। हमारी दादी प्रकाशमणि उनके हाथों में हाथ दे करके दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हो गया। बाबा अव्यक्त हुआ, उन दिनों में 100-125 सेंटर थे, बाबा का स्थान था। और जो बाबा अव्यक्त हो गया तो भाई अभी क्या होगा, कौन मुरली चलाएगा, कौन यज्ञ का कारोबार देखेगा। बाबा पहले से बताए नहीं थे कि हम अव्यक्त हो रहे हैं तो ये कारोबार होगा। अचानक बाबा चले गए, क्योंकि वो बाबा बोलेंगे तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा अव्यक्त हुआ, अव्यक्त होने के बाद ये हो गया, दादी ने सब जगह मैसेज दिया, सब लोग आ गए, बाबा को 3 दिन रखा गया उनकी बॉडी को। बाबा को जब हमारे यहाँ नियम है, अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद सब स्नान पानी करके भोजन बनता है, उसका भोग लगता है। भोग लगा, गुलजार दादी ट्रांस में गई, भोग लगाने के लिए बाबा आ गया, आंख बंद करके ऊपर गई और फिर आंखें खोली तो परिवर्तन दादी में, तो बाबा का आवाज, बाबा ने कहा कि बाबा कहीं गया नहीं है, संकल्प नहीं चलाओ, बाबा यही है, केवल रूम और कपड़ा चेंज किया है, वतन में गया है, शरीर बदला है, बाबा को जब बुलाओ तो बाबा आएगा। और बाबा हर सेवा करता था। क्यों बदला है? क्योंकि अमेरिका जाना होगा तो पासपोर्ट बनवानी होगी, वीजा लेनी पड़ेगी, टिकट लेनी पड़ेगी, और यहां जाएंगे अमेरिका तो यहां अब्सेंट होना पड़ेगा। अब बाबा ये शरीर को छोड़ दिया, एक सेकंड में सारे विश्व को चक्कर लगा लेता है। जो बच्चे बुलाते हैं वहां पहुंच जाता है। शरीर से कोई माउंट आबू बुलाए तो मेरे को जाने में आधा घंटा घंटा तो लगेगा ना, शरीर में नहीं रहेंगे तो एक सेकंड में माउंट आबू, एक सेकंड में जयपुर, एक सेकंड में बॉम्बे। तो बाबा अव्यक्त होकर के, इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी संस्था, उसके गुरु, उसके बड़े जब शरीर छोड़ते हैं तो संस्था नीचे चली जाती है, या उसके अनुयायी अच्छे होते हैं तो वहीं तक थमा कर रखते हैं। प्रैक्टिकल आप लोगों ने अपने देखा होगा। बाबा के जाने के बाद ये संस्था दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ गई। बाबा के टाइम में कभी विदेश में आश्रम नहीं था, बाबा व्यक्त हुए विदेश में सेवा शुरू हो गई। इंडिया में 100 सेंटर होगा, इससे भी कम होगा। आज इंडिया में 8000 ब्रांचेज है। कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां ब्रह्मकुमारी आश्रम नहीं होगा। कोई गांव में जाकर के गीता पाठशाला हमारे भाई बहनों ने खोला है। तो ये कौन करा रहा है? बाबा व्यक्त होकर के सब बच्चों को करा रहे हैं। अंग्रेज आते हैं, वो कहते हैं अरे हमको तो साक्षात्कार हुआ, ये बाबा को हमने देखा, और फिर ढूंढते ढूंढते वो आ गया। तो बाबा बैठे बैठे वतन में साक्षात्कार करा रहा है। आप लोगों को बाबा ने प्रेरणा दिया है, न तो अपने क्लिनिक, घर, बच्चे, कई कारोबार छोड़ करके गर्मी में आए हैं, हमारे बुलाने से आए हैं नहीं। घर में, आपके ऑफिस में, आपके हॉस्पिटल में, रिसेप्शन पर, आपके रिसेप्शनिस्ट एसी में है, पेशेंट एसी में, वेटिंग रूम एसी है, और ये आप यहां कूलर में सोए हो, कौन कर रहा है? बाबा का ये है। किसी ने आवाज नहीं किया भाई कूलर नहीं, हमको एसी चाहिए, नहीं, ये बहुत अच्छा है। इतना कौन कर रहा है? सुबह सुबह देखते हैं कोई 4 बजे अपने घर में, जब से MBBS किया होगा, MD पूरा किया होगा, तो कोई 4 बजे उठा नहीं होगा, 12-1 बजे 2 बजे तक सेवा किया होगा, इमरजेंसी संभाला होगा, एक बार सो गए फिर 4 बजे नहीं उठेंगे। और आप लोग 3:30-4 बजे उठते हैं, किसी के चेहरे पर थकावट नहीं लग रही है? थके हैं कोई हाथ उठाए? बाबा कर रहा है। मैं सुबह यहां योग कराता हूं, इतना लहर शांति के प्रकंपन होती है, हैरान होता हूं। योग तो मैं पहली बार यहां थोड़ी कर रहा हूं, मेडिटेशन हॉल में करता हूं, चारों तरफ करता हूं। जो वाइब्रेशन यहां का होता है कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। चूंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे आए हैं, हमारे डॉक्टर आए हैं, इनको अनुभूति करा करके इनको घर भेजना है। आप आए उस दिन और आज कैसे हैं? हमारा टाइम हो गया है, हम आप लोगों का अनुभव सुनेंगे, जो अनुभव किए हैं। तो 10 मिनट के लिए हमें चाय या जो भी आपको लेना है लीजिए, और आकर के सब अपना अनुभव सुनाइए। और कई लोगों ने कहा कि आप लोग इतना हमको भरपूर कर दिए हो, फूल कर दिए हो, हम जाकर के क्या करें।